मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपके सामने हिमालय के कुछ ऐसे तथ्य पेश करूंगा जो सामान्यतया किताबों में उस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलते, खासकर ऐसी किताबें जो हम एक एजुकेशनल अपने दौर में पढ़ रहे होते हैं। चूंकि हिमालय का जो विषय है वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और मैंने आपको ध्यान होगा कि पहले भी बताया था कि हर साल मेंस में हिमालय को लेकर के कोई न कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो कुछ मैं आपको अनजाने से नए तथ्यों के से परिचित कराऊंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ एक जो दूसरी घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। और मैं जिन घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं, इनफैक्ट वो न्यूज़ से जुड़ी हुई घटनाएं नहीं हैं, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इनसे आपको मदद मिलेगी। आज एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जो दैनिक जागरण में छपा हुआ है, शंकर शरण जी का, राजनीति शास्त्र के आप प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया है और मुझे लगता है कि आपको नोट कर लेना चाहिए। इस तरह की जो बातें होती हैं सामान्यतया न्यूज़ में नहीं आती हैं। उन्होंने बताया कि जो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसने अभी अभी एक विधेयक पारित किया है, एक बिल पारित किया है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कानून बनाया है। और उसका संबंध इस बात से है कि रिपब्लिक जो वैल्यूज होते हैं, जो गणतांत्रिक मूल्य होते हैं, उन्हें कैसे और मजबूत बनाया जाए, इससे जुड़ा हुआ विधेयक पारित किया है। उस विधेयक का उद्देश्य क्या है? उस विधेयक का उद्देश्य है कि जो फ्रांस में जो मुस्लिम रह रहे हैं, आम जो मुस्लिम रह रहे हैं, किस तरीके से उन आम मुस्लिम लोगों को, जो चरमपंथी इस्लाम विचारधारा के जो लोग हैं, उनसे दूर रखा जाए। यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये आम सबके लिए नहीं है कि कैसे सभी लोगों को इस्लाम से दूर रखा जाए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल सब कुछ एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इस्लाम के ही ऐसे लोग जो प्यारे लोग हैं, जो इस्लाम के सही वैल्यूज को समझते हैं और उसी तरह से जीवन यापन भी कर रहे हैं, वो सरल सहज और सच्चे लोग हैं, उन्हें कैसे चरमपंथी इस्लाम से दूर रखा जाए। चरमपंथी मतलब जो बिल्कुल उसके एक्सट्रीम को लेकर के चलते हैं, उनसे कैसे दूर रखा जाए। और आप जानते हैं कि यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो खासकर अभी जो आईएस है, इन सब की गतिविधियों से काफी पीड़ित भी हैं, और वहां अटैक भी हुए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं। तो फ्रांस ने ये विधेयक पारित किया है। जैसे इस विधेयक के तहत जो एक दो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, शायद इनसे आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी, कि जैसे मस्जिद है तो मस्जिदों के लिए कहा गया कि वो बाहर से धन नहीं ले सकते, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो मस्जिदों को धन दिया जाता है, जो चरमपंथी लोग हैं, जो इस्लाम को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें धन देते हैं, और धन देने के बाद फिर वो अपनी शर्तें थोपते हैं, अपने ढंग से काम कराना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से इस विधेयक में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो आम मुस्लिम लोग हैं वो अपने बच्चों को जो अंडरग्राउंड इस्लामिक जो एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है इस्लाम के नाम पर, वहां न भेजें। क्योंकि होता यह कि जब बच्चे ऐसी जगहों पर जाएंगे तो फिर इस्लाम के बारे में गलत फहमियां पैदा होंगी, वो भी चरमपंथी बन जाएंगे, उग्र बन जाएंगे, और इस तरीके से जो उनका मानस है वो एकदम से बदल जाएगा। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं इसमें की गई है। दोस्तों, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2-3 साल पहले मेंस के सेकेंड पेपर में, जनरल स्टडीज के, फ्रांस और भारत की धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। प्रश्न का एग्जैक्ट स्वरूप क्या था मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली था। बेहतर होगा कि आप उसे देख लें। तो किस तरीके से फ्रांस ने एक यह विधेयक पारित किया है, इसे आप बड़े आराम से कहीं संदर्भ के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। आज के एक अखबार में मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिकल, जैसा क्या न्यूज़ फॉर्मेट में आर्टिकल मिला, और वह है फेथ फॉर अर्थ को लेकर। फेथ फॉर अर्थ, फेथ यानी कि यहाँ विश्वास नहीं, यहाँ आस्था होगा, पृथ्वी के प्रति आस्था। ये एक अभियान है, अभियान आप यूं कह लीजिए, इस पृथ्वी को बचाने का अभियान, या जलवायु में हो रहे तेजी के साथ परिवर्तन को बचाने का अभियान, या पर्यावरण रक्षण अब कह सकते हैं। फेथ फॉर अर्थ ये अभियान शुरू किया गया है, और छोटे स्तर पर नहीं है, ये बड़े स्तर पर शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें बकायदे जो यूएन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूएईपी, उसके तहत ये शुरू किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है। देखिए इसमें इसका क्या मानना है, इसका यह मानना है कि अब उन्हें यह लगने लगा है कि धर्म ही दुनिया की वो ताकत है जो हमारे यहां के जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसे पर्यावरण योद्धा बना सकती है। पर्यावरण योद्धा यानी कि ऐसे लोग जो पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएंगे। इनका सोचना यह है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उसमें से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस एथिक्स का पालन करते हैं, यानी कि जो धार्मिक नैतिकता होती है उसका पालन करते हैं, और इनकी ताकत इतनी बड़ी है कि जितने भी धार्मिक संगठन हैं अगर उनकी पूरी संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। इनके पास दुनिया की 10% जो रिहायशी जमीन है वो इन संगठनों के पास है, और 60% स्कूल और 50% हॉस्पिटल इन लोगों के पास है। मतलब ये कितनी बड़ी ताकत है। अब आप देखें कि 80% लोग जो धार्मिक नैतिकता का पालन कर रहे हैं, आप कह सकते हैं वो धर्म के फॉलोअर्स हैं, अगर उनके धर्म में पर्यावरण के रक्षण को जोड़ दिया जाए तो आप कल्पना करके देखिए कि कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। दोस्तों इस बारे में आप गर्व कर सकते हैं कि भारत ने आज नहीं या 1000 साल पहले नहीं, बहुत प्राचीनतम वैदिक पीरियड से ही बकायदे पर्यावरण को धर्म का अभिन्न अंग माना है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो पर्यावरण है वो हमारे पूजा पाठ संस्कार दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस मायने में आप कह लीजिए कि भारत बिल्कुल दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अगर मैं जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर पर्यावरण पर मेरा लेक्चर सुना हो तो इंडिपेंडेंट एक लेक्चर इसी तरीके का है कि भारत में जो पर्यावरण संबंधी अवधारणा रही है वो किस तरीके की रही है, फिर आगे वह किस तरीके से विकसित होती 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 हमारे संविधान तक पहुंची है। वो बड़ा खूबसूरत लेक्चर है दोस्तों, और मैं यहाँ खासकर बताना चाहूँगा कि आप लोग जब उस विषय के लेक्चर सुनिएगा उसी समय आप उस लेक्चर को सुने, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब होकर के न सुने, लेकिन वह एक ऐसा लेक्चर है जिसका इस्तेमाल आप बाकायदे पर्यावरण से संबंधित अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं, और निबंध में तो आप कर ही सकते हैं। ये एक लेटेस्ट जानकारी मैंने दी है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, फेथ फॉर अर्थ। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जिसके तहत मैं आपसे हिमालय के बारे में कुछ तथ्य शेयर करने जा रहा हूं, और मुझे ये तथ्य कुछ इस तरह के मिले हैं जो सामान्यतया पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलते, सामान्यतया हो सकता है कि किसी किसी में आपको किसी तथ्य का उल्लेख भी मिल जाए। दोस्तों पहली बात तो यह है, और ये शायद आपने पढ़ा भी होगा लेकिन ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी 65 मिलीमीटर की गति से गतिशील है। आपको मालूम है कि इसकी गतिशीलता के कारण ही फिर इस क्षेत्र में भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं, और इसी के कारण हर साल हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है। और कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो लेटेस्ट डेटा जो जारी किए गए हैं ऊंचाई को लेकर के एवरेस्ट को, तो उसमें बताया गया है कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो पहले की तुलना में 0.86 मीटर बढ़ गया है, यानी कि उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो ये प्रूफ हो रहा है कि हिमालय जो पर्वत है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। हिमालय, हिम प्लस यानी कि धन आलय, हिम का मतलब है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर, कमरा, स्थान, विद्यालय, जहां विद्या का घर हो, जहां विद्या का स्थान हो, तो हिमालय यानी कि बर्फ का घर, नाम ही से दिया गया बर्फ का घर, और यह दुनिया का बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा घर है। पहले दूसरे स्थान पर अंटार्कटिका और आर्कटिक आते हैं, और जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो हिमालय का है, और इसीलिए कभी कभी इसे थर्ड पोल भी कह दिया जाता है, थर्ड पोल। और इस क्षेत्र में यानी कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग 15,000 विशालकाय यानी कि बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और इसी में से एक ग्लेशियर है गंगोत्री, जिससे गंगा नामक पवित्र नदी निकलती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि गंगोत्री के उस बिंदु पर जहां से गंगा नदी निकलती है मसूरी ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग उसमें आपको ट्रेकिंग के लिए जाना पड़ता है, तो हम लोग बिल्कुल उस बिंदु तक गए हैं और वहाँ के दर्शन हम लोगों ने किए हैं और वहाँ के जल का स्पर्श भी किया है। हालांकि पानी इतना ठंडा होता है कि आप छूना उसके लिए मुश्किल होता है। दोस्तों, भारत में काफी हिस्से तक फैला हुआ है और इसका जो टोटल एरिया है लगभग लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और हमारे यहाँ के देखिए किन किन राज्यों से इसका संबंध है ना, सीमागत संबंध मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ के कुछ राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हुए हैं, हिमालय क्षेत्र में जो स्थित हैं, देखिए एक हिमाचल प्रदेश है ही, उत्तराखंड है ही, राइट। इसके बाद फिर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा होगा कि आप मैप में जाकर के इन्हें देख लेंगे, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख है ना। ये तो हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे असम के 2 जिले यहाँ स्थित हैं और ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल का एक जो जिला है वो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो थोड़ी सी ये भी आपको जानकारी रहेगी तो आपके दिमाग में तस्वीर साफ होगी। यहाँ जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है कहा जाता है कि वो 30 किलोमीटर, 30 वर्ग किलोमीटर का है, जो गंगोत्री है। और यहाँ जो सबसे बड़ी झील है वो 700 वर्ग किलोमीटर की है, जिसे कहा जाता है यमद्रोक, यमद्रोक। हिमालय का जो ऊपरी भाग है जो टॉप का, वहां स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ पाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी संख्या धीरे 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 लगातार कम होती जा रही है। और यही स्थिति हिमालयन कस्तूरी मृग का भी है। कस्तूरी मृग की चर्चा हमारे साहित्य में बहुत होती है। कस्तूरी मृग वह मृग होता है कि जिसके अंदर एक मृग है जिसके अंदर कस्तूरी बस रही होती है, तो कस्तूरी की सुगंध से वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, इधर उधर भागता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, प्यारी प्यारी सुगंध, लेकिन वो होती उसी के अंदर ही है। तो इस उदाहरण का उपयोग हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के चिंतन के अंतर्गत बहुत मिलता है, कस्तूरी मृग। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि धीरे धीरे इसकी संख्या भी कम होती जा रही है। एक जो इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक है जूनिपेरस टिबेटिका, यह लगभग लगभग 4,900 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये वनस्पति का हिस्सा है, लगभग लगभग मोटे तौर पर आप कह लीजिए 5,000 फीट की ऊंचाई। तो ये कुछ तथ्य जो थोड़े से रोचक किस्म के हैं मैंने आपको बताए हैं। और बाकी तो हिमालय के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुने ही होंगे, किताबों में दिया हुआ है, आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं उन्हें दोहराने की यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझता। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। इन 3 दोस्तों के नाम हैं राहुल कुमार, अनीश कुमार और गणेश कुमार धाकड़। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं रविकांत पासवान, शकील अहमद, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, विकास गुप्ता औरंगाबाद बिहार से, हेमंत नागर, सोम दत्त कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, उत्कर्ष गर्ग और चंदन सिंह कुंवर। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।